लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि श्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्णता हासिल करे, परिवारों का भरण पोषण प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हो सके तथा समाज को मानवीय बनाया जा सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। सदाचार संबंधी सूक्तियों से सम्मिलित यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। ईश्वर से मिले जीवन के वरदान को मनुष्य योग्य रीति से ग्रहण करे तथा अपने कल्याण के लिए प्रज्ञा और विवेक के साथ इसका सदुपयोग करे, यही इस ग्रंथ का आग्रह है। सूक्ति ग्रंथ में प्रज्ञा, न्याय, धर्म, विनम्रता, ईमानदारी, प्रेम और धैर्य के वर्ण का मनुष्यों को परामर्श दिया गया है, ताकि मनुष्य इन मूल्यों को आत्मसात कर अपने जीवन को सफल और साकार बना सके। वह यह याद रखे कि प्रभु ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वसृष्टा और सर्व पालक हैं, जिनकी आज्ञाओं का पालन कर मनुष्य सुख और शांति में जीवन यापन कर सकता है। आगूर की सुक्तियां। उस मनुष्य ने इतियल और उकल से यह कहा, मैं मनुष्यों में से सबसे अधिक मूर्ख हूं, मुझमें मनुष्यों जैसी समझ नहीं, मैंने प्रज्ञा प्राप्त नहीं की, मुझे सर्वोच्च प्रभु का ज्ञान नहीं। कौन स्वर्ग जाकर फिर उतरा, किसने पवन को मुट्ठी में बंद किया, किसने पानी को कपड़े में बांध लिया, किसने पृथ्वी की सीमाओं को निर्धारित किया, उसका और उसके पुत्र का नाम क्या है, यदि तुम जानते हो तो मुझे बताओ। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 30वें अध्याय के प्रथम 4 पद। विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस अध्याय की व्याख्या आरंभ की थी। सूक्ति ग्रंथ का 30वां अध्याय इसके 1 से लेकर 14 तक के पदों में आगूर की सूक्तियों को प्रस्तुत करता है। इस तथ्य पर हम गौर कर चुके हैं कि बाइबल आचार्यों ने सूक्ति ग्रंथ के 30वें अध्याय को सूक्ति ग्रंथ के सर्वाधिक पेचीदे अंशों में गिनाया है, इसलिए नहीं कि इसके सत्यों को स्वीकार करना मुश्किल लगता है या इसके कथन गहन है या इसमें ईश्वर का चित्रण परेशान करने वाला या आपत्तिजनक है, बल्कि इसलिए कि यह रहस्यपूर्ण दावे, गैर अनुक्रमिक और ऐसी सामग्री प्रस्तुत करता है जिसका हमारे जीवन के लिए कोई स्पष्ट धार्मिक या नैतिक अनुप्रयोग नहीं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें चिंतनशील रुख अपनाना होगा। इसमें कौन से विचार प्रस्तुत किए गए हैं, मानवता को यह किस दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है, इसमें ईश्वर को किन विचारों और किन शब्दों में चित्रित किया गया है, यह अध्याय मसीह की शिक्षा से कैसे मेल खाता है, इसमें ईश्वर के अनुग्रह को मनुष्य कैसे पहचान सकता है, आदि आदि प्रश्नों पर चिंतन हमें इस अध्याय को समझने में मदद प्रदान करेगा। आगूर की सूक्तियां घमंड और लालच का मजाक उड़ाती हैं। यह घमंडी और लालची व्यक्ति की निंदा करती हैं, जबकि विनम्रता और संतोष की प्रशंसा करती है। श्रोताओ, आगूर इस विचार को खारिज कर देता है कि वह बुद्धिमान है। वह खुद को सबसे अधिक मूर्ख घोषित करता है, क्योंकि उसे सर्वोच्च ईश्वर का ज्ञान नहीं है। यह तो सच्ची है कि मनुष्य जब विनम्र बनकर खुद को नीचा दिखाता है तभी वह ऊंचा उठाया जाता है। जब वह स्वीकार कर लेता है कि उसका ज्ञान सीमित है, उसका ज्ञान सागर की एक बूंद मात्र है और विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह सीख नहीं सकता, तभी वह ज्ञान हासिल कर पाता और प्रज्ञावान बनता है। आगूर ईश्वर की सर्व सत्ता को और मनुष्य की सीमाओं को स्वीकार करता है। वस्तुतः जितने अधिक प्रबुद्ध लोग होते हैं उतना ही अधिक वे अपनी अज्ञानता पर विलाप करते हैं, उतना ही अधिक वे ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं और उनके समृद्ध अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं। उक्त पदों में आगूर मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते हैं जो हमारे उद्धारकर्ता होने के लिए स्वर्ग से नीचे उतरे और हमारे अधिवक्ता होने के लिए स्वर्ग में आरोहित हो गए। श्रोताओ, यदि येसु मसीह इस धरती पर देह धारण नहीं करते और अपने पवित्र क्रूस द्वारा हमारा उद्धार नहीं करते तो पृथ्वी की नींव मनुष्य के पाप के कारण अभिशाप के बोझ के नीचे दब जाती। इसलिए ईश वचन पर हम संदेह नहीं करें, इसमें जोड़ घटाव का प्रयास नहीं करें, क्योंकि ईश्वर के वचन में ही जीवन है। और अब आइए सूक्ति ग्रंथ के 30वें अध्याय के 5वें और 6वें पदों पर विचार करें। आगूर कहता है, ईश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा विश्वसनीय है। ईश्वर अपने शरणार्थियों की ढाल है। उसके वचनों में अपनी ओर से कुछ मत जोड़ो, कहीं ऐसा न हो कि वह तुमको डांटे और झूठा प्रमाणित करे। श्रोताओ, इन पदों में ईश्वर के वचन की शुद्धता, शक्ति और अखंडता का विवरण है। ईश्वर का हर वचन शुद्ध है। आगूर ने ईश्वर के वचन की शुद्धता को महत्व दिया और समझाया कि यह पूरी तरह से शुद्ध होने के कारण अच्छा और मददगार है। इस पर भरोसा किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। श्रोताओ, यहाँ वास्तव में लेखक ने धातुओं के शुद्धिकरण का रूपक प्रस्तुत किया है। ईश्वर ने जो कुछ भी कहा है, जो भी प्रेरणा भविष्य वक्ताओं ने प्राप्त की है, वह शुद्ध है। उसमें कोई त्रुटि नहीं। यह कसौटी पर परीक्षण के बाद भी हमेशा सोने की तरह होता है, जो आग को सहन करता और उसी चमक और उसी शुद्धता एवं उसी वजन के साथ बाहर निकलता है। लेखक का कहना है कि अटकलों और अफवाहों पर विश्वास नहीं किया जाए, बल्कि पुस्तक से, यानी कि बाइबल धर्म ग्रंथ से सीखा जाए कि जो कुछ भी ईश प्रकाशना द्वारा हमें मिला है वह हमारे जीवन की पवित्र निर्देशिका है। फिर लेखक कहता है कि ईश वचन उन लोगों के लिए एक ढाल है जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। आगूर कहता है कि ईश्वर एक ढाल है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर अपनी संतान, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपना शुद्ध वचन देते हैं। लेखक का यह भी आग्रह है कि हम ईश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत न करें, जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ के 22वें अध्याय के 18वें और 19वें पदों में आदेश दिया गया है। लिखा है, यदि कोई इनमें से कुछ जोड़ेगा तो ईश्वर इस पुस्तक में लिखी हुई विपत्तियां उस पर ढाएगा, और यदि कोई भविष्यवाणी की इस पुस्तक की बातों से कुछ निकालेगा तो ईश्वर इस पुस्तक में वर्णित जीवन वृक्ष और पवित्र नगर से उसका भाग निकाल देगा। श्रोताओ, अनेक बार ऐसा होता है कि कई लोग स्वतः को प्रचारक घोषित करते हैं, उपदेशक घोषित करते हैं और तोड़ मरोड़ कर बाइबल की शिक्षा को प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं को उक्त पदों में चेतावनी दी गई है। कुरिन्थियों को प्रेषित 1 पत्र के 4वें अध्याय के 6वें पद में संत पॉल का भी यही परामर्श है। लिखते हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ की मर्यादा का उल्लंघन न करे।
शब्दों से ज्ञान पाया,
तुम्हारे शब्दों से ज्ञान पाया,
वचन तुम्हारे सराय सत्यम तनाय संसा सुंदरम,
वचन तुम्हारे सदाय सत्यम बनाय संसार सुंदरम।
तुम्हारी वाणी है मेरे सम्मुख,
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 मिठाए हर दुख जगाए हर सुख।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने परमधम पीठे मिशन सोसाइटीज के महत्वपूर्ण वैश्विक प्रयासों की प्रशंसा की है और आश्चर्य व्यक्त किया है कि वे प्रभावी रूप से उन सभी बपतिस्मा प्राप्त एवं सहायक कलीसियाई समुदायों के बीच मिशनरी जिम्मेदारी को जागृत करने के प्राथमिक साधन है जहाँ कलीसिया युवा है। पोप लियो 14वें ने बृहस्पतिवार को परमधम पीठे मिशन सोसाइटीज की आम सभा के प्रतिभागियों से मुलाकात की और उन्हें प्रोत्साहन देते हुए कहा, आज पेंतेकोस्त के बाद के दिनों की तरह कलीसिया पौत्र आत्मा के नेतृत्व में विश्वास, खुशी और साहस के साथ इतिहास के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखती है, क्योंकि वह यीशु के नाम और सुसमाचार के उद्धारक सत्य में विश्वास से पैदा होने वाले मुक्ति की घोषणा करती है और परमधम पीठ मिशन सोसाइटीज इस महान प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने उनसे आग्रह करते हुए कहा, मिशनरी गठन के समन्वय और स्थानीय स्तर पर मिशनरी भावना को प्रेरित करने के अपने कार्य में मैं राष्ट्रीय निदेशकों से आग्रह करूंगा कि वे धर्म प्रांत पलियों और समुदायों का दौरा करने को प्राथमिकता दें और इस प्रकार विश्वासियों को मिशन के मौलिक महत्व को पहचानने में सहायता करें तथा विश्व के उन क्षेत्रों में हमारे भाइयों और बहनों को सहायता प्रदान करें जहाँ कलीसिया युवा है और बढ़ रही है। अंग्रेजी में बोलते हुए संत पापा ने एक मिशनरी के रूप में अपने कार्य को याद किया तथा दुनिया में कलीसिया के लिए उनके सार्थक काम के लिए 112 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वालों की सराहना की। उन्होंने कहा, मैं आपकी समर्पित सेवा के लिए आपके और आपके सहयोगियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ जो कलीसिया के सुसमाचार प्रचार के मिशन के लिए अपरिहार्य है, जैसा कि मैं व्यक्तिगत रूप से पेरू में अपने वर्षों के प्रेरित कार्यों से प्रमाणित कर सकता हूँ। अंत में पोप लियो ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा कि पौत्र वर्ष हम सभी को आशा के तीर्थयात्री बनने के लिए चुनौती दे रहा है और इसलिए उन्हें उनके लाभार्थियों और उनके महत्वपूर्ण कार्य को माता मरियम को सौंपने से पहले उन्हें सभी लोगों के बीच आशा के मिशनरी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। पोप लियो 14वें ने रोमी परमाध्यक्ष कार्यालय में नियुक्ति का कार्य शुरू करते हुए सिस्टर तिज़ियाना मिरलेत्ती को वैटिकन के समर्पित जीवन विभाग का सचिव नियुक्त किया। सचिव के रूप में सिस्टर मिरलेत्ती सिस्टर सिमोना ब्रामिल्ला के अधीन काम करेंगी जिन्हें जनवरी में विभाग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है और जो वैटिकन विभाग का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। सिस्टर ब्रामिल्ला ने 2023 से 2025 तक विभाग के सचिव के रूप में काम किया जिस पर सिस्टर मिरलेत्ती को नियुक्त किया गया है। सिस्टर तिज़ियाना मिरलेत्ती का जन्म 30 सितंबर 1959 को इटली के पिनेतो में हुआ था। 1986 में उन्होंने गरीबों की फ्रांसिस्कन धर्म संघ में प्रथम धर्म संघ की व्रत धारण किया। 1984 में कानून की डिग्री प्राप्त की तथा 1992 में रोम के लातेरन विश्वविद्यालय से कैनन लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। 2004 से 2013 तक वे अपने धम्म संघ के सुपीरियर जनरल के रूप में काम किया। वर्तमान में वे रोम स्थित परमधम पीठे अंतुनियानु विश्वविद्यालय में कैनन लॉ संकाय में प्रोफेसर हैं और अंतर्राष्ट्रीय धम्म संघों के सुपीरियर जनरलों के संघ में
एक कैनन लॉ वकील के रूप में काम करती हैं। होली फैमिली के पल्ली पुरोहित फादर गैब्रियल रोमानेल्ली ने वैटिकन न्यूज को गजा में कठिन मानवीय परिस्थिति के बारे बतलाया, लेकिन साथ ही उन्होंने पोप लियो 14वें के शांति के शब्दों के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में गजा में होली फैमिली के पल्ली पुरोहित फादर गैब्रियल रोमानेल्ली ने इस समय उस क्षेत्र के माहौल का वर्णन किया। फादर रोमानेल्ली ने कहा, भोजन, स्वच्छ पानी और दवा की कमी हमारी सुरक्षा के खतरे से कहीं ज्यादा, मुझे चिंता इस बात की है कि उम्मीद खो सकती है। उन्होंने कहा, चूंकि गजा पट्टी में लोगों के साथ इंसान की तरह नहीं बल्कि वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जा रहा है, आशा फीकी पड़ रही है। यह उम्मीद कि युद्ध समाप्त होगा, शांति वापस आएगी, घरों का पुनर्निर्माण होगा और यह कि छोटा एवं नाजुक ख्रिस्त समुदाय जारी रहेगा, संघर्ष के बीच बनाए रखना मुश्किल है। पल्ली पुरोहित ने इस बात पर जोर दिया कि गजा में रहने वाले अधिकांश लोग नागरिक हैं और किसी भी तरह से सशस्त्र संघर्ष का हिस्सा नहीं है। फादर रोमानेल्ली ने कहा, हमारे समुदाय को बचाना चाहिए ताकि गजा में ख्रिस्तों की स्पष्ट उपस्थिति बनी रहे। वहां के ख्रिस्त समुदाय के बारे बतलाते हुए फादर रोमानेल्ली ने कहा, कलीसिया और दुनिया भर के कई मित्रों से मिली मदद की बदौलत हम न केवल अपने पल्लीवासियों की मदद कर पाए हैं बल्कि हजारों परिवारों की भी मदद कर पाए हैं, चाहे उनका धर्म या मूल कुछ भी हो, जो मदद मांगने हमारे पास आते हैं। लेकिन पिछले करीब 3 महीनों से हमें गजा के बाहर से कुछ भी नहीं मिला है। सभी सहायता, चाहे भोजन, पानी या दवा, इसराइली सेना द्वारा प्रवेश द्वार पर रोक दी जाती है। सौभाग्य से हमने कुछ सामग्री जमा कर ली थी और उसके द्वारा हम जीवित रह गए हैं, लेकिन अब हम हमारे समुदाय के बाहर के लोगों की मदद नहीं कर सकते। हमारे पास अभी भी रोटी पकाने के लिए थोड़ा आटा है, लेकिन हमें इससे कई बार छानना पड़ता है क्योंकि इसमें कीड़े भरे होते हैं। बीमारी से बचने के लिए हमें पानी को भी शुद्ध करना पड़ता है। कभी कभी हम स्थानीय किसानों या अस्थायी स्ट्रीट स्टॉल से सब्जियां खरीद लेते हैं, लेकिन वे बहुत महंगी होती हैं। एक प्याज की कीमत लगभग 10 यूरो होता है, टमाटर थोड़े सस्ते मिलते हैं। अब हमें अपने बचे हुए सामान का प्रबंधन बहुत सावधानी से करना है क्योंकि हम लगभग 500 शरणार्थियों को आश्रय दे रहे हैं, जिनमें मदर तेरेसा की धर्म बहनों द्वारा देखभाल किए जाने वाले लगभग 50 बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, दवाओं की स्थिति निराशाजनक है, हमारे पास दवाएं पूरी तरह खत्म हो गई हैं, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए खतरनाक हैं जिन्हें पुरानी बीमारियां हैं, उनके पास अब उपचार तक पहुंच नहीं रह गई है। जिधर भी आप मुड़ते हैं आपको जरूरत ही नजर आती है, लेकिन सबसे बढ़कर कोई नहीं जानता कि यहाँ रहने वाला 2.3 मिलियन लोगों के लिए भविष्य क्या होगा, और यही अनिश्चितता आशा की कमी की ओर ले जा रही है। लोग सभी के द्वारा त्यागे जाने का अनुभव करते हैं, उन्हें लगता है कि अब केवल ईश्वर ही उनके भाग्य की परवाह करते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।